भागवत सार की श्रृंखला में चौथे स्कंद के 16वें अध्याय पर चर्चा जारी रहेगी। इसके एक श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। मात्र भक्ति पर स्त्रीषु पत्न्यामर्धैवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनां मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत्सिद्ध किंकरो ब्रह्मवादिनां मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्याम् अर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनां। पत्न्यामर्धैवात्मनः मातृभक्ति अपनी माता के समान आदर करने वाले परस्त्रीषु पराई स्त्री के प्रति, पत्न्याम अपनी पत्नी को अर्ध आधा इव सदृश आत्मनः अपने शरीर का प्रजासु नागरिकों के प्रति पितृवत पिता के समान स्निग्ध स्नेही किंकर दास ब्रह्मवादिनां भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। तात्पर्य, विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण हैं जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वानों के लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वह अपने को भगवान के भक्तों का दास मानता था। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राज प्रसाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान ये परब्रह्म के विविध नाम हैं। परब्रह्म तो श्री कृष्ण हैं। इसे भगवद गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया है, परम ब्रह्म परम धाम। इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम भगवान के भक्तों को सूचक है। राजा को चाहिए कि भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राजा को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपना संचालन करे। चूंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया इसलिए उनकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थना आपको दोहराएंगे, कृपया सब एक साथ कहें।
सर्वशास्त्राधि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा। सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचो चतह कर हानमुंच कदाचिन् मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्ण। कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार पृथु महाराज का गुणगान बंदी जन करने लगे, हालांकि पृथु महाराज ने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुमति ली, कहा कि हम साधुओं के आदेश के अनुसार कर रहे हैं, हमारी बड़ी उत्सुकता है आपको आपका गुणगान करने के लिए, और फिर एक आप ही तो हैं जिनका गुणगान किया जा सकता है। तो ऐसे उन्होंने गुणगान प्रारंभ किया। कल हम लोग कुछ गुणगानों को सुन चुके हैं कि कैसे पृथु महाराज के विषय में कहा गया कि धर्म को धारण करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर धर्म का पालन करेंगे, रक्षा करेंगे धर्म की, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो धर्म के विरोधी हैं उनको दंड देंगे, और सारे दुनिया में सारे जगत में धर्म को स्थापित करेंगे। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया, और फिर अलग अलग देवताओं से कैसे सारे देवता उनके शरीर में हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा, क्योंकि ये भगवान का प्रतिनिधि होता है इसलिए इसको नरदेव कहते हैं, तो उनके शरीर में सारे देवता वास करते हैं। तो कैसे वास करते हैं, उनके गुणों के द्वारा ये बंदी जन प्रकट कर रहे हैं। तो कुछ देवताओं का वर्णन हम करेंगे, जैसे उन्होंने वर्णन किया सूर्य का, हम लोग कल सुन चुके हैं कि कैसे सूर्य 8 महीने तक जल लेता है लेकिन फिर 4 महीने उसी जल को दे देता है। दूसरा हमने वर्णन सुना भूमि का, पृथ्वी, कि कैसे पृथ्वी सहनशील है और हमें भक्त के रूप में कैसे सहनशील होना चाहिए, ये भगवान पृथु महाराज के उदाहरण से हमें सिखला रहे हैं। आगे बंदी जिन कहते हैं कि अगर इंद्र वर्षा करने में चूक जाए, अगर इंद्र वर्षा नहीं करे तो फिर पृथु महाराज अपनी शक्ति से वर्षा को करवाएंगे। तो क्या कह रहे हैं बंदी जन, वो ये बतला रहे हैं कि वैसे तो इंद्र का कार्य है वर्षा करना, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इंद्र कभी वर्षा ना करे तो भगवान पृथु महाराज, जो भगवान के अंश अवतार हैं, ये स्वयं वर्षा को करवाने में सक्षम है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, पहली चीज बंदी जन ये बता रहे हैं कि देवता जो कार्य करते हैं उनको शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, तो देवताओं की शक्ति से देवता कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर देवता कार्य नहीं करेंगे तो भगवान कुछ कर नहीं सकते, शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, इसीलिए अगर वे कार्य नहीं करेंगे तो भगवान खुद कर लेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि सारी चीजों के स्रोत, जो हमें सुविधाएं प्रदान होती हैं देवताओं के द्वारा, ये सारी सुविधाएं दरअसल भगवान प्रदान कर रहे हैं, भगवान की शक्ति है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं। दूसरी बात हम यहां सीखते हैं, बंदी जन कह रहे हैं कि हो सकता है देवता अपने कर्तव्य में चूक जाएं। देवताओं के लिए कर्तव्य दिए गए हैं, देवता तो पद हैं, अपने अपने पद पर रहकर कर्तव्य करते हैं। तो बंदी जन कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा समय आए कि देवता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, लेकिन भगवान अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। भगवान प्रेम करते हैं, देवता कर्तव्य करते हैं। तो हो सकता है कर्तव्य पालन में कभी कभी चूक जाए, जैसे हम देखते हैं देवता कभी कभी नहीं कर पाते, भगवान को भूल जाते हैं, जैसे इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है इंद्र अपने कार्य में कर्तव्य में गलती कर दे, कर नहीं पाए। जैसे इंद्र ने आगे चलकर हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रति गलती कर दी, लेकिन भगवान कभी नहीं चूकते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते हैं अपने भक्तों को। तो अगर देवता नहीं करते तो भगवान कर देते। तो इसलिए ये चीज हमें जाननी चाहिए कि किस प्रकार बंदी जन वर्णन कर रहे हैं कि अगर इंद्र नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पृथु महाराज स्वयं करेंगे। फिर आगे वो वर्णन करते हैं चंद्रमा का, तो कहते हैं कि ये लोगों को शीतलता प्रदान करने में चंद्रमा के समान होंगे। तो चंद्रमा, जब चांद की किरणें, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उष्णता का अनुभव होता है, लेकिन जब चंद्रमा की किरणें आती हैं तो बड़ा शीतलता का अनुभव होता है। तो ये कह रहे हैं कि पृथु महाराज अपने नागरिकों को बड़ा प्रेम करेंगे, अपनी दृष्टि से उनको शीतलता प्रदान करेंगे, अर्थात उनकी ओर इतने प्रेम से देखेंगे कि व्यक्ति को बहुत आनंद आएगा, भगवान का दृष्टिपात। तो यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि कई तरह के दृष्टिपात हो सकते हैं। दृष्टिपात मतलब देखना। तो एक होता है जब सूर्य देखता है, जला देता है, हम लोग सूर्य को देख नहीं पाते हैं, लेकिन चंद्रमा शीतल करता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें चंद्रमा के समान होना चाहिए, शीतलता प्रदान करनी चाहिए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, शीतलता प्रदान करने वाले। तो इस तरह भगवान के जो दृष्टि होगी वो नागरिकों को शीतलता प्रदान करेगी। वैसे भगवान की दृष्टिपात का अगर वर्णन किया जाए, अलग अलग स्थानों में हम देखते हैं कि कैसे भगवान के दृष्टिपात का अलग अलग असर होता है। भगवान के देखने का अलग अलग असर अलग अलग लोगों पर होता है। जैसे जब भगवान इस प्रकृति को देखते हैं, इस सृष्टि की शुरुआत में भगवान दृष्टि डालते हैं प्रकृति पर, तो केवल दृष्टि से जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं, जीवों का प्रवेश करा देते हैं इस सृष्टि में, इस प्रकृति में। तो वो एक भगवान का दृष्टिपात है, भगवान देखते हैं और बस जीव प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात सृष्टि करते हैं भगवान दृष्टिपात से। और भगवान अपनी दृष्टि से संहार भी कर सकते हैं, इसका वर्णन भगवत गीता में आता है, और उस भगवत गीता के श्लोक को भागवत के प्रथम स्कंद में समझाया जाता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा रथ स्थापित कीजिए दोनों सेनाओं के बीच में, ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लोग युद्ध के लिए आए हैं। तो भगवान ले गए रथ को, और जब रथ को ले गए उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने सब की ओर देखा, पश्यताम, देखते रहे। उन्होंने बताया, देखो ये खड़े हैं भीष्म, ये खड़े हैं द्रोणाचार्य, देखो अर्जुन, देखो। तो हर एक को देख रहे थे, और भागवत में वर्णन है कि केवल उस दृष्टिपात से देखने से भगवान ने उन सब की आयु कम कर दी, अर्थात युद्ध के पहले ही भगवान ने उनको मार दिया केवल दृष्टि से। अर्जुन ने तो केवल मरे हुए लोगों पर तीर चलाया था, केवल गिराया अर्जुन ने, मारा तो भगवान ने था। तो भगवान ने केवल दृष्टि से देख कर सबको मार दिया, ऐसा वर्णन भागवत में। तो देखिए, एक तरफ भगवान सृष्टि करते हैं देखने से, दृष्टिपात से, दूसरी तरफ संहार कर देते हैं असुरों का, जो लोग विरोधी हैं, अधर्मी हैं। और ऐसे लोग जो साधक हैं, साधक अर्थात संघर्ष कर रहे हैं भगवान की ओर जाने का, उनको देखते ही उनके ऊपर दृष्टि डालकर भगवान उनको सांत्वना देते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने आध्यात्मिक इच्छाओं को बनाए रखें, आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रदान भी करते हैं और बनाए रखने की शक्ति भी साधक को देते हैं। और जब वही दृष्टि भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर डालते हैं, जैसे गोपियों पर, जब भगवान गोपियों की ओर देखते हैं केवल दृष्टि मात्र से गोपियों के हृदय में शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम जो इस जगत के परे है। तो ये भगवान का देखना है, दृष्टि है। एक तरफ सृष्टि कर देते हैं, जीवों को प्रवेश करा देते हैं, दूसरी ओर संहार कर देते हैं सारी सेना का केवल दृष्टि से, तीसरी ओर साधकों को आध्यात्मिक इच्छाएं देते हैं और उनको बनाए रखने का बल देते हैं, और चौथी ओर अपने शुद्ध भक्तों को शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं केवल दृष्टि से। तो इसीलिए बंदी जन यहां गुणगान कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि मात्र से शीतलता प्रदान करेंगे और ये चंद्रमा के समान होंगे शीतलता प्रदान करने में। अर्थात भक्तों को यह भी सीखना चाहिए कि जहां आवश्यक नहीं हो वहां जलाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कृष्ण ने मार दिया देखकर, तो सब जगह नहीं मारते हैं, देखते ही सबका जीवन समाप्त नहीं कर देते हैं। तो जहां आवश्यकता ना हो भक्तों को बड़ा सौम्य रहना चाहिए। फिर आगे वो वर्णन करते हैं कि ये वरुण के समान होंगे। वरुण कौन है? वरुण है जल के देवता। तो कहते हैं कि जैसे वरुण समुद्र में ढके रहते हैं, वरुण को कोई देख उनके कार्यों को पता नहीं चलता क्योंकि समुद्र ढका रहता है, इसी तरह पृथु महाराज के कार्यों को कोई जान नहीं पाएगा, उनके कार्यों को, उनके धन को, उनके ज्ञान को कोई जान नहीं पाएगा। कितना इनके पास धन है, कितना ज्ञान है, क्या कार्य कर रहे हैं, ये कोई जान नहीं पाएगा। ये ढके रहेंगे, छुपे रहेंगे, गुप्त रहेंगे। तो यहां इससे हम लोग महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि पृथु महाराज क्यों अपने कार्यों को ढके रहेंगे, क्यों छुपा कर रखेंगे, कोई देख नहीं पाएगा धन को, ज्ञान को। क्योंकि धन, ज्ञान इत्यादि को दिखलाकर व्यक्ति आनंद लेना चाहता है, मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इनका प्रदर्शन नहीं करता। अगर ज्ञान है तो ज्ञान का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करता, जहां आवश्यकता है वहां ज्ञान देता, लेकिन अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कहा गया है कि एक शिष्य को गुरु के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भले ही शिष्य बहुत श्रेष्ठ क्यों ना हो, गुरु से भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन गुरु के सामने उसको नम्र रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उनके सामने कौन गुरु श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जब वो गुरु स्वीकार करते हैं तो बड़ी नम्रता से अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। ईश्वरपुरी ने लिख दिया एक ग्रंथ, कहा चैतन्य महाप्रभु से, ढूंढो, मैंने सुना है तुम बड़े पंडित हो, ढूंढो इसमें कोई गलती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं आपने लिखा है, भक्त ने लिखा है, कहां गलती हो सकती है। नहीं नहीं फिर भी देखो। तो देख लिया और कहा कि हाँ ये एक गलती है, एक गलती निकाली चैतन्य महाप्रभु ने उनके ग्रंथ में। और ईश्वरपुरी से कहा कि ये गलती है, ईश्वरपुरी ने कहा ठीक है। अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो ईश्वरपुरी ने कहा, तुमने कल कहा था ये गलती है, दरअसल वो गलती नहीं है, ये देखो इसको ऐसे कहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो ये गलती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि हाँ मेरी गलती हो गई। पहली बार आज तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कहे गए वाक्यों को कोई खंडन नहीं कर पाया था, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन ईश्वरपुरी ने कहा ये गलती नहीं है, तुमने जो कहा वो गलत है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, हाँ मेरी गलती हो गई। ये दिखलाने के लिए कि गुरु के सामने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्या चैतन्य महाप्रभु उनकी गलती को खंडित नहीं कर सकते थे, जो एक श्लोक के 64 अलग अलग अर्थ बता सकते हैं, जो सारे ज्ञान के स्रोत हैं, क्या वो गलती कर सकते हैं? लेकिन गुरु के सामने उन्होंने, तो इसीलिए प्रशंसा ना हो इसीलिए अपने कार्यों को
अपने धन को इत्यादि वो छुपा कर रखेंगे। भक्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है अपने ज्ञान अपने धन को छुपा कर रखना। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, वो कहते हैं गोपये देवतम इष्टम गोपये गुरुमात्मनः गोपये च निजम मंत्रम गोपये निज मालिकम। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चार चीजों को गोपनीय रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। और क्या है वो चार चीजें? सबसे पहला गोपयेत देवतम इष्टम, अपने इष्ट देव को, जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनको छुपा कर रखना चाहिए। दूसरा गोपयेत गुरु महात्मनः, अपने गुरु को छुपा कर रखना चाहिए। गोपयेत गोपनीय रखना चाहिए, गोपयेत मतलब गोपनीय। तो गोपयेत देवतम इष्टम गोपयेत गुरुमात्मनः गोपयेत च निजम मंत्रम, जो मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसको छुपा कर रखना चाहिए। गोपयेत च निजम मंत्रम गोपयेत निज मालिकम, और अपनी माला जिस पर हम जप कर रहे हैं उसको छुपा कर रखना चाहिए। तो ये चार चीजों को सनातन गोस्वामी कहते हैं छुपा कर रखना चाहिए। और हम लोग तो नहीं छुपाते, हमारे तो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, हम तो जहां जाते हैं वहां बोलते हैं हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं। तो क्या अर्थ है, क्या सनातन गोस्वामी ने गलत लिखा या हम लोग गलत कर रहे हैं, प्रभुपाद ने गलत कहा? प्रभुपाद तो सारी दुनिया में जाकर कह रहे हैं कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसको समझना चाहिए। ये क्या है कि हम अपने इष्ट देव को छुपा कर रखें, गुरु को छुपा कर रखें, मंत्र को छुपाएं, माला को छुपाएं? क्यों कहा सनातन गोस्वामी ने? और अगर सनातन गोस्वामी ने कहा है तो इसका कोई तो रहस्य, कोई तो अर्थ होना चाहिए। तो इसका कारण है क्यों इन चीजों को छुपाना चाहिए। इसका पहला कारण यह है कि अगर हम इन चीजों को किसी अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने बहुत ज्यादा प्रकट करते हैं तो हो सकता है उसकी बातों से हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारी श्रद्धा हमारे मंत्र में बहुत नहीं है, महामंत्र में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हम जाकर किसी से कहते हैं हम महामंत्र का जप करते हैं, वो कहते हैं बेकार है एकदम, अरे गायत्री जप करना चाहिए, गायत्री से ही केवल भगवान की प्राप्ति होगी, गायत्री वेद मंत्र है इसलिए गायत्री जाप करना चाहिए। तो हो सकता है आपके मन में आ जाए ये भी सही कह रहे, और वो कई कारण दे, यहां कहा गया वहां कहा गया इस शास्त्र में उस शास्त्र में, और आप कहो ये बात तो सही है कल से गायत्री जाप करूंगा। श्रद्धा कमजोर हो सकती है अगर हम अपने आध्यात्मिक चीजों को इस तरह प्रकट करते हैं अश्रद्धालु लोगों के सामने। दूसरा कारण इसको छुपाने का यह है कि भले श्रद्धा कम ना हो लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा हम इन चीजों को बाहर प्रकट करेंगे तो हम इसको बड़ा सस्ता ले लेंगे, महत्व भूल जाएंगे इसका। जैसे धन, धन को छुपा कर रखा जाता है, सोने को छुपा कर रखा जाता है, जो महत्वपूर्ण चीज है उसको बाहर नहीं दिखलाया जाता। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा नहीं करते कि आपके घर में कोई आता है तो आप जितना सोना है लाकर सामने रखते हो, देखो ये मेरा सोना है, इतना सोना मेरे पास है, कोई नहीं दिखाता, छुपा कर लॉकर में दरवाजे बंद कर करके उसको रखा जाता कि कहीं कोई देख नहीं ले, चुरा नहीं ले। इसी तरह ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं, अनमोल चीजें हैं, हमारे गुरु, हमारा मंत्र, हमारी माला, हमारे देव, छुपा कर रखना चाहिए इनको, ताकि हम आदर करना सीखें। नहीं तो आदर भूल जाएंगे, जब कोई चीज बड़ी बड़ी आसानी से होती है तो हम उसका आदर नहीं करते, तो इसीलिए छुपा कर रखना चाहिए। और एक कारण है इसको छुपाने का कि हमें अहंकार हो जाएगा, हम जाकर लोगों को बोलेंगे जानते हो मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूं, तुम बेकार आदमी अभी तक शिव जी पर पड़े हुए हो, मैं भी कभी कभी करता था शिव जी के लेकिन अब कृष्ण की भक्ति करता, अहंकार। तो अहंकार आ जाएगा हृदय में, मेरा मंत्र श्रेष्ठ है, और जहां अहंकार आया भक्ति का मूल गुण नम्रता चली जाएगी। ये जान लीजिए कि भक्ति करने में, भक्ति की प्रगति में मूल गुण है नम्रता। नम्रता होती है तो बाकी सारे गुण आते हैं। अहंकार से सारे गुणों का नाश होता है। व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हो सकते हैं, अच्छा भाव हो सकता है, लेकिन अगर अहंकार है नाश हो जाता है उन सबका। हो सकता है भक्त के अंदर अच्छे गुण ना हो, लेकिन अगर वो नम्र है तो वो सारे गुणों को पा लेता है। सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः, जो भक्ति करता है नम्र भाव से उसके अंदर सारे गुण आ सकते हैं। हराव भक्तस्य कुतः महत् गुणः, लेकिन जिसके अंदर भक्ति नहीं है, नम्रता से भक्ति नहीं करता, वो कहां से महान गुणों को उत्पन्न कर सकता। इसलिए अहंकार नहीं चाहिए तो छुपा कर रखना चाहिए हमें अपने मंत्र को, देव को इत्यादि। इसीलिए कहा गया है कि गोपयेत देवतम मिष्टम गोपयेत गुरुमात्मनः, गोपयेत च निजम मंत्रम गोपयेत निज मालिकम। इसको छुपा कर रखें। और वैसे भी एक और कारण अपने गुरु को छुपाने का है। जैसे हम सब एक ऐसी संस्था में हैं जिसमें एक गुरु नहीं है, कई गुरु हैं, और ऐसी संस्था में अगर हम अपने गुरु को नहीं छुपाते हैं, छुपाते नहीं है मतलब प्रचार करते हैं सबको जाके, मेरा गुरु श्रेष्ठ है, मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, तो क्या होगा? हम संस्था को तोड़ने के कारण बनेंगे। ये जो संस्था है, जो एक है, श्रील प्रभुपाद के अधीन रहकर सब लोग एक रहने का, एकता का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम अपने अपने गुरु को छुपाएंगे नहीं, अर्थात बढ़ावा देंगे, तो फिर क्या होगा? संस्था टूट जाएगी, हम भेद करेंगे और कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेंगे। ऐसे कई शिष्य हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने गुरु का खाली केवल प्रचार करके, उनको बढ़ावा देकर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। गलत है। ऐसी संस्था जहां सब गुरु समान हैं, जब हम केवल अपने गुरु को बढ़ावा देते हैं, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आपको मिलता है, नया भक्त मिलता है, आप किसी एक गुरु के शिष्य हैं और आप उसको देखते ही सोचते हैं ये मेरे गुरु का शिष्य बनना चाहिए, तो आप उसको प्रचार करते हैं, आप जानते हो मेरे गुरु इतने महान हैं, मेरे गुरु ये किया है, वो किया है, बाकी गुरु हैं इस कौन में, लेकिन मेरे गुरु ऐसे हैं। गलत है, टूट जाएगी संस्था। ऐसा कई बार हुआ है, हमें अनुभव है। एक बार एक भक्त ने हमसे कहा, हमने जब एक भक्त को कहा कि फलां फलां व्यक्ति ने, एक भक्त ने संन्यास लिया है, तो उन्होंने पूछा अच्छा संन्यास लिया, किससे संन्यास लिया? हमने कहा उनसे संन्यास लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सुना है कि इस कौन में केवल एक ही व्यक्ति संन्यास दे सकते हैं। तो हमने कहा किसने कह दिया आपको? ये गलत धारणा है, कोई भी सन्यासी संन्यास दे सकता है, संन्यास प्रदान कर सकता। तो ऐसी बातें फैलाना ये संस्था को तोड़ना। और वो भक्त सोच रहे हैं कि मैं अपने गुरु के प्रति बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं अपने गुरु का गुणगान करके। नहीं, वो ना तो अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं और ना कृष्ण को। कोई प्रमाणिक गुरु इससे प्रसन्न नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसी संस्था में हमें गुरु को भी छुपा कर रखना चाहिए। छुपाने का अर्थ है कि अपने हृदय में हम उनको आदर दें, आदर सम्मान दें, अकेले में हम उनके प्रति पूर्ण समर्पण करें। लेकिन जब हम दूसरों के साथ हों, ऐसे लोगों के साथ जो अन्यों के शिष्य हैं, उस समय अपने गुरु का गुणगान नहीं करें। ये सही दृष्टि में गुरु को प्रसन्न करेगा, कृष्ण को प्रसन्न करेगा, और ये सच्ची सेवा होगी गुरु की। तो इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि गोपये देवतम मिष्टम गोपये गुरुमात्मनः, अपने गुरु को छुपा कर रखना चाहिए। तो ऐसे बंदीजन कहने लगे कि ये वरुण के समान होंगे जो अपने सारे कार्यों को छुपा कर रखेंगे। और फिर आगे वो वर्णन करते हैं कि अपने शत्रुओं के लिए ये अग्नि के समान होंगे।
अग्नि के समान अर्थात शत्रु इनके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि अग्नि के पास जाना कठिन होता है। जब बड़ी तेज अग्नि हो तो जा नहीं सकते हैं अग्नि के पास, तो अग्नि के पास आ नहीं पाएंगे। दूसरा, अग्नि क्या कार्य करती है, जला देती है। जो ऐसे लोग होते हैं तो वो लोग अग्नि की जो जलन है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। और तीसरी चीज, अग्नि को जीतना कठिन होता है। तो बंदी जन कहने लगे कि पृथु महाराज अग्नि के समान होंगे, इनके जो शत्रु हैं इनके पास भी आ नहीं पाएंगे, इनको सहन नहीं कर पाएंगे और इनको कभी जीत नहीं पाएंगे। भक्ति में लगे हुए एक साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने शत्रुओं से अग्नि की तरह आचरण करे, ऐसे आचरण करे जैसे पृथु महाराज करने वाले हैं। कौन से शत्रु? वो शत्रु नहीं जिन्होंने भक्ति में आने से पहले आपको कष्ट दिया था, अब उनको जाकर मारेंगे। नहीं, वो शत्रु जो भक्ति में बाधा है, आपकी इच्छाएं, आपके भोग प्रवृत्ति, आपकी आदतें, ये भक्ति में बाधाएं हैं। भक्ति में कोई व्यक्ति बाधा नहीं है आपके लिए, ये जान लीजिए। हम ये गलत सोचते हैं कि अगर फला फला व्यक्ति मेरी भक्ति में बाधा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कोई व्यक्ति आपकी भक्ति में बाधा नहीं बन सकता। भक्ति जीव का अधिकार है और उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता आपसे, ये आपका अधिकार है। जैसे बालक का जन्म होता है भारत में, जन्म होते ही वो भारतीय हो जाता है और उसके भारतीय रहने को कोई छीन नहीं सकता। वो चाहे जेल में भी चला जाए लेकिन फिर भी भारतीय है, उसको सजा हो जाए फिर भी भारतीय है। इसी तरह भक्ति, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म मतलब जब जीव का जन्म हुआ, जब जीव का अस्तित्व आया। और कब आया? जीव तो शाश्वत है, न आदि है न अंत है, अर्थात ये हमारा शाश्वत अधिकार है भगवान की भक्ति करना, कोई छीन नहीं सकता हमसे। लेकिन इनमें बाधाएं आती हैं हमारी इच्छाओं के द्वारा, हमारी बद्धता के द्वारा, हमारी भोग प्रवृत्ति के द्वारा, हमारे अपराधों के द्वारा। तो ये हमारे सही शत्रु हैं। भक्ति में हमारे शत्रु वो नहीं हैं जो हमें आकर अपमान करें, जो आकर कुछ बुरा भला कहें, वो तो हमारे मित्र हैं, हमें सिखला रहे हैं कि ये जगत रहने लायक नहीं है। लेकिन भक्ति के शत्रु वो हैं जो हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं, हमारी भोग करने की इच्छाएं, आनंद लेने की इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जिससे हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, ये हमारे शत्रु हैं। और ऐसे शत्रुओं के प्रति एक भक्त को अग्नि के समान होना चाहिए, अर्थात अग्नि के समान इन चीजों को वो दूर रखे। इतना शक्तिशाली तपस्या से अपने आप को बना लीजिए कि ये इच्छाएं, ये भौतिक भोग की इच्छाएं, ये बाधाएं आप तक पहुंच ना सके। जब राजा शक्तिशाली होता है तो उसके शत्रु उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। इस तरह भक्ति की शक्ति से, तपस्या की शक्ति से अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाएं कि ये सारी चीजें, ये शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह हम तक पहुंच नहीं पाए। और इतना ही नहीं, हम उनके लिए असहनीय हो जाएं, जैसे अग्नि अपने शत्रुओं के लिए असहनीय हो जाती है, सहन नहीं कर पाते हैं अग्नि की लपटों को, अग्नि की आग को, उष्णता को। तो हमारी भक्ति, हमारी तपस्या का बल इतना होना चाहिए कि ये जो हमारे शत्रु हैं इनके ऊपर हम असहनीय हो जाएं, ये सहन नहीं कर पाए हमें, और तब हम जितेंद्रिय हो सकते हैं। हमें जितेंद्रिय होना चाहिए, जीत लेना चाहिए इंद्रियों को, इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, गुलाम नहीं होना चाहिए, गोदास नहीं।
हमें गोस्वामी होना चाहिए। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति गोदास है, अदांत गोभीर विशतम दमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम, कैसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, इच्छाओं को वश में नहीं किया, अदांत गोभीर, अदांत गोभीर मतलब जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा, उसकी मति कृष्ण में नहीं लग सकती। परतो स्वतो वा, अपने प्रयास से और दूसरों के प्रयास से, कोई कितना ही प्रयास कर ले उसकी मति नहीं लगेगी कृष्ण में। मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम, जिसने अपने घर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी अपने समाज को बस उसको ही स्व मान लिया है, अदांत गोभीर, विशतम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चरवणानाम, उसके लिए तो नरक बना हुआ है, तामिश्र नाम का नमक नरक, और वो निश्चित नरक में जाएगा। पुनः पुनः शर्वित चरवणानाम, जो बारंबार ऐसी चीजों को चबा रहा है जो चबा कर फेंके जाने लायक। तो इसीलिए इंद्रियों को जीतना है, जितेंद्रिय। तो जब इंद्रियां हमें कष्ट दें, हमारी इच्छाएं हमें कष्ट दें, हमें अग्नि के समान होना चाहिए। तो इसी बात को बंदीचन यहां पर कह रहे हैं, और फिर आगे वो कहते हैं कि प्रजा पालन में वो धर्मराज के समान होंगे। धर्मराज के समान अर्थात किसी से पक्षपात नहीं करेंगे, सबको समान देखेंगे। धर्म सबको समान देखता है, दंड उसे देता है जो धर्म का पालन नहीं करता, और आगे उसे बढ़ाता है जो धर्म का पालन करता है, लेकिन सबको समान देखता। जैसे भगवान, भगवान सबको समान देखते हैं, जिन्हें दंड भी देते हैं। जैसे भगवान ने दृष्टिपात करके सारे कौरवों की उम्र को कम कर दिया, लेकिन उनको भी मुक्त कर दिया। प्रभुपाद लिखते हैं जितने भी लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, वो सब वैकुंठ धाम को गए, और इसका वर्णन उद्धव भी करते हैं। तो ये समानता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान अगर असुरों को दंड देते हैं तो वो भी उनके भले के लिए, कभी कभी दंड देना अनिवार्य होता है, क्योंकि दंड से व्यक्ति भगवान की ओर आता है। कभी प्रेम कभी दंड, तो भगवान कभी किसी को प्रेम दिखलाते हैं, कभी किसी को दंड देते हैं। उद्देश्य यही है कि वो मेरी भक्ति करे और अपने जीवन को सफल करे, इसीलिए भगवान पक्षपात नहीं करते। तो इसीलिए धर्मराज के समान होंगे, और इनकी जो ख्याति है वो उन उस इतनी फैल जाएगी जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है, उन सब स्थानों में पृथु महाराज की ख्याति फैल जाएगी, इतने श्रेष्ठ होंगे पृथु महाराज। और फिर आगे वो कहते हैं कि इनके अंदर कई गुण होंगे। पहला गुण, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को, प्रण को बनाए रखेंगे। दूसरा गुण, सत्य बोलेंगे, हमेशा सत्य पर बने रहेंगे। और तीसरा गुण, वे सदैव भक्तों का आदर करेंगे, जैसे हम लोग इस श्लोक में भी पढ़ रहे हैं ब्रह्मवादी नाम, तो वे सदैव भक्तों का आदर करेंगे, सबके प्रति आदर का भाव रखेंगे, एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। जो वचन हम लें, जो प्रण हम लें, उन पर बड़ी कड़ाई से पालन करें, बहुत आवश्यक है। हम लोग नियम का पालन करते हैं, वचन लेते हैं, माला जप करने का वचन लेते हैं, कुछ नियमों को पालन करने का वचन लेते हैं, कड़ाई से पालन करें। कल भी हम इन नियमों का वर्णन कर रहे थे। दूसरी चीज, सत्य बोलें, प्रामाणिक रहें, कम से कम अपने से झूठ नहीं बोलें, भगवान से झूठ नहीं बोलें, अपनी जो कमियां हैं हमारे अंदर उनको दूर करने का प्रयास करें और सबका आदर करें। और फिर आगे वो कहते हैं, जैसे इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि वो दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी के अलावा बाकी अन्य स्त्रियों को माता के समान देखेंगे। चाणक्य पंडित इसको कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु सपश्यति सपंडितः। वो कहते हैं कि पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, डिग्री लेने से पंडित नहीं बनता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं पंडित कौन है, मातृव्रत मातृवत परदारेषु, परदारेषु मतलब दूसरे की स्त्री को माता के समान देखना, लोष्टवत परद्रव्येषु दूसरों के धन दूसरे के ऐश्वर्य को पत्थर के समान देखना, कूड़ा करकट के समान देखना, लोष्टवत। आत्मवत सर्वभूतेषु और जितने भी जीव हैं उनको अपने ही समान मानना, यो पश्यति स पंडितः जो ऐसे देखता है वो पंडित है। अर्थात क्या बताया जा रहा है, मातृवत परदारेषु मतलब काम वासना से दूर रहना, मातृवत अपनी पत्नी के अलावा जो गृहस्थ भक्त हैं उनको अपनी पत्नी के अलावा बाकी सारी स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए, उस आदर से देखना चाहिए। एक कथा है बहुत हमारे महान आचार्य हुए लोचनदास ठाकुर, तो लोचनदास ठाकुर का विवाह हो गया, जो जब विवाह उस समय बहुत बचपन में 5 साल की उम्र में, आज भी कभी कभी बंगाल में हो जाते हैं 5-6 साल की उम्र में विवाह हो जाते हैं, फिर थोड़े समय तक वो लड़की बड़े होने तक घर में रहती है, फिर जब बड़ी होती है तो पति आकर लेकर जाता, आज भी ये प्रथा प्रभुपाद लिखते हैं एक स्थान पर कि हमने देखा, तो कभी कहीं कहीं होता होगा आज भी, तो छोटे छोटे बच्चे होते गोद में लेकर उनको शादी कराई जाती है, फेरे कराए जाते हैं, क्या करे 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा तो खेलने भागेगा, कहाँ शादी करेगा। तो लोचनदास ठाकुर का विवाह कम उम्र में हो गया, तो जो उनकी पत्नी थी वो वहीं रह रही थी, उन्होंने देखा ही नहीं बचपन में, वो हो गया कहाँ देखते हैं, अब 5 साल का बच्चा 4 साल की लड़की क्या देखेंगे, वो तो बस ये देखेगा कब गोद से उठकर भागूं और वहां लड्डू पड़ा है वो खाऊं, तो लड्डू को देखेगा पत्नी को तो नहीं देखेगा, वैसे अच्छा भी है लेकिन खैर। तो अब फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तब ये लेने गए, और जब लेने गए तो जैसे ही गांव में पहुंचे उनको पता ही नहीं था घर कहाँ है कौन स्त्री है, अकेले गए थे लेने के लिए, पर ये पता था इनका इनका घर है, उनके यहाँ जाना है, उनकी लड़की को लाना है। तो उन्होंने देखा कि एक महिला कुएं से जल निकाल रही है, तो बड़ी नम्रता से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा माता आप जानती हैं कि ये व्यक्ति का घर कहाँ है, तो उसने कहा हाँ आप इधर चले जाइए यहाँ से ऐसे जाएंगे तो घर मिलेगा, बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपने मुझे बहुत सहायता की, और वो चले गए। तो जब घर पहुंचे उन्होंने स्वागत किया कि चलो हमारा दामाद आया है लड़की को लेके जाने के लिए, और जब लड़की को लाए तो देखा कि वो वही लड़की थी जिससे पता पूछा था लोचनदास ठाकुर ने, और जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने कहा ये मैं इसको पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता, इसको तो मैंने माता स्वीकार कर लिया, मैंने अभी अभी इसको माता के रूप में देखा, मैंने माता कहकर पुकारा है, और फिर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरी माता के समान है। ये चरित्र है व्यक्ति का कि उन्होंने एक बार माता कह दिया उस भाव में फिर कहा कि मैं उसको पत्नी नहीं देख सकता, तो ये भाव होना चाहिए मातृवत परदारेषु। तो केवल बोलने के लिए नहीं, जैसे हमारी संस्था में हम स्त्रियों को माता जी बोलते हैं, तो बोलने के लिए नहीं ये भाव होना चाहिए, माता के समान मानना चाहिए। तो जितने भी गृहस्थ भक्त हैं अपनी पत्नी के अलावा, और यहां हम ये कहना चाहते हैं कभी कभी गृहस्थ भक्त अपनी पत्नी को माता जी कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए, उनके लिए वो माता के समान नहीं, बाकियों के लिए हैं लेकिन उनके लिए नहीं। तो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है व्यक्ति अपनी पत्नी को माता जी कहकर बुलाता है, पत्नी को छोड़कर बाकी सब के लिए माता का भाव होना चाहिए, और ब्रह्मचारियों के लिए सभी स्त्रियों के लिए माता का भाव। फिर वो चाहे छोटे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, ना हो, सबके लिए माता का भाव होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हम लोग माता जी कहकर पुकारते हैं, एक बार हमारी संस्था के एक वरिष्ठ सन्यासी से किसी लड़के ने प्रश्न किया कि महाराज मैं देखता हूं इस संस्था में लोग एक दूसरे एक लड़कियों को माता जी कह, वो नया लड़का था, तो लड़कियों को माता जी कहकर बुलाते हैं फिर उन्हीं से शादी कर लेते हैं, ऐसा कैसे है? तो महाराज ने उत्तर दिया, इसीलिए अब तक मैंने शादी नहीं की है, चिंता मत करो। तो हमें माता जी केवल कहना नहीं है, उस भाव में रहना चाहिए। तो मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की जो संपत्ति है वो हमारे लिए कूड़ा करकट है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, बाकी सारे जीवों को जैसे हम अपने आप को आदर देते हैं ऐसे सब जीवों को आदर देना। तो इस तरह पृथ्वी महाराज ये कार्य करेंगे। और फिर वो आगे कहने लगे कि इतना ही नहीं, पृथ्वी महाराज की जो पत्नी है वो उनका गुणगान करेंगी और वो कहेंगी कि देखो कैसे पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उस 100वें अश्वमेध यज्ञ से इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ का घोड़ा। और इतना ही नहीं, देखो कैसे पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को गाय के रूप में उसका दूध दहन किया, ऐसे महान कार्य पृथ्वी महाराज ने किए। और फिर वो कहेंगी उनकी पत्नियां कि साथ ही साथ पृथ्वी महाराज ने सनत कुमार जो 4 कुमारों में से एक हैं उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे श्रवण किया है भागवत का या भगवान के ज्ञान का। तो ऐसा बंदी जनों ने कहा कि ये सब होगा। और फिर अपनी इन प्रशंसा को पृथ्वी महाराज ने सुना, उन्होंने इन सबको बहुत उनकी पूजा की, उनको उपहार दिए, अन्य भी जो नागरिक थे उनको उपहार दिए। और फिर पृथ्वी महाराज राज्य सिंहासन पर बैठे हैं। तो ऐसे इस अध्याय में इन सारे गुणों का वर्णन हुआ है। अब अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इस अध्याय में कहा गया कि पृथ्वी को उन्होंने गाय बनाकर उसका दूध दहन किया, यज्ञ से चुरा लिया घोड़े को इंद्र ने और सनत कुमार से, तो तुरंत विदुर अगले अध्याय में अब प्रश्न करेंगे कि अरे अरे रुक जाइए, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, गाय कैसे बन गई पृथ्वी, क्या हुआ था, इतना कैसे कष्ट दिया। तो फिर पृथ्वी महाराज की आगे कथा को अगले अध्याय से वर्णन